ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्याम् नरं चैव नरोत्तमाम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुके। हरे कृष्ण मोक्षपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमोवाचार पदाय निताय कृपा पदाय ने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामोतारिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद का सोलवा अध्याय का 22वां श्लोक आज हम सब लोग लेंगे। यह जो स्कंद है पांचवां स्कंद, वैसे तो श्रीमद् भागवत के सभी स्कंद बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10वां स्कंद तो शिरोमणि है, लेकिन पांचवां स्कंद जो है हम सब कर्मियों के लिए, हम सब जो भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं कार्मिक जीवन से गृहस्थ जीवन से और सांसारिक जीवन से, जो हम लोग भक्ति मार्ग को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, हमारे मन में बहुत संशय रहते हैं। ये सृष्टि की संरचना कैसे हुई, ये पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, ये सारे नभ जल आकाश पर्वत शिखाएं श्रृंखलाएं ये सब कहाँ से आई, पृथ्वी की उत्पत्ति का पूरे सृष्टि की संरचना का हमारे मन में बहुत उथल पुथल रहती है और कई प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं। क्योंकि जब हम सामाजिक जीवन में होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनकी सोच एकदम अलग होती है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लैरिटी कुछ अलग होती है, और जो दूसरे वेद पुराण और सब पढ़ के अगर प्रारब्ध होता है परिवार में, तो हम सब की जो स्थिति होती है अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम के द्वारा परंपरा के अंदर अगर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ना ही हमको सत्य का ज्ञान होता है, बल्कि भगवान की सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के शक्तिमत्ता होने का, भगवान के सार्वभौमिकता और सर्वशक्तिमान होने का भी हमको पूर्ण प्रमाण मिलता है। और फिर अगर इनकी व्याख्या कोई विज्ञान का विद्यार्थी भी करना चाहे तो विज्ञान यह सब नहीं बता पाती, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो विज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है। विज्ञान वो है जो परंपरा के अंदर भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा के अंदर भगवान के द्वारा बताई हुई ऋषि मुनियों तपस्वियों के द्वारा जो स्थापित की हुई जो परंपरा है, उसमें जब हमको एवं परंपरा प्राप्तेम, जो ज्ञान हमको परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, फिर हमको उसमें विश्वास हो जाता है। तो विज्ञान के भी जो छात्र छात्राएं होते हैं वो भी जब श्रीमद् भागवत से ये उद्धरण प्राप्त करते हैं तो उनको पूर्ण विश्वास होता है कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति संतति सब कैसे हुई। तो आज का जो अध्याय जो हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जिस भारतवर्ष में जब जहां हम हैं और ये ब्रह्मांड जो हम अपने चारों तरफ पूरी पृथ्वी देखते हैं, ये जो भूभाग है इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। इस पूरे अध्याय के अंदर मेरु पर्वत का वर्णन है, सुमेरु पर्वत का वर्णन है, और भी बहुत सारे जो बहुत विशिष्ट जो हैं पर्वत उनका वर्णन है। और यह मेरु जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत जो है, इसमें जो पर्वत श्रृंखला है मेरु पर्वत की, यह स्वर्ण का पूरा पर्वत है। और इसका जो आकार है, जो वर्णन किया गया है, वह एक कमल के सदस्य है, जिसके अंदर सात कमल के अंदर जो पत्तियां होती हैं, कमल दल जो होता है सात पत्तियों का, उसका जो मध्य भाग है वह जम्बू द्वीप कहलाता है। और जितनी पवित्र नदियां हैं, जैसा आप जानते हैं, गंगा चाहे यमुना चाहे वह गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी शिप्रा जलांगी, ये सब इसी के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो आप सोचिए ये कितना शुद्ध, कितना पवित्र स्थान है जम्बू द्वीप। और फिर हम कितने भाग्यशाली होंगे जिस धरा पर हम सबने जन्म ग्रहण किया है। यह वह जम्बू द्वीप है जिसका वर्णन, जिसके पास इलाव्रत है और आसपास के सारे और जो भी व्रत हैं दक्षिण भाग के अंदर पश्चिम में, पूरे वृतांत पूरा वर्णन है। यह मेरु पर्वत जिसका संपूर्ण, जिसमें जम्बू द्वीप मध्यभाग में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है 64,000 योजन है। एक योजन करीब 8 मील का होता है, और 8 मील जो है उसको 1.6 से गुणा करें तो 16, तो समझे करीबन 10 किलोमीटर मोटे अरमान में किलोमीटर के अंदर हो जाता है। और उसको आप 64,000 के अंदर आप गुणा करें तो यह तो उसकी ऊंचाई है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 32,000 योजन है। और शिखर पे जाकर 16,000 योजन और नीचे के भाग में 32,000 योजन इसका मापदंड है। और उसमें भी 16,000 योजन जो है वो पृथ्वी के नीचे है। आप सोचिए ऐसा पर्वत आज हमें नहीं देखने को मिलता। हिमालय पर्वत हैं जिन श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको आप जरूर देख सकते हैं टीवी में, पिक्चरों में उनके बारे में जान सकते हैं, या जिनका सौभाग्य हो नेपाल काठमांडू में जाके उनकी श्रृंखला जो है एवरेस्ट के दर्शन कर सके। वरना आप एक अनुमान लगाइए कि एक पर्वत श्रृंखला, तो आप सोचेंगे भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, और जिसमें हीरे मोती और सारे जितने भी विशिष्ट तत्व हैं, जितने भी आपके हीरे जवाहरात, ये सब इस जम्बू द्वीप के अंदर ग्रसित हैं, विराजे हुए हैं, सब प्रकट हैं, भूगर्भ में सब समाए हैं। ये भगवान की सार्वभौमिकता, भगवान का ऐश्वर्य जब हम कहते हैं तो कोई सोचेगा ये ऐश्वर्य आता कहाँ से है। हम तो जाके सुनार की दुकान से खरीद लाते हैं, 1 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 1 कैरेट 5 कैरेट हीरा खरीद लाए, मोती सब ले आए, लेकिन हम उसी में खुशी से समा जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हजारों लाखों 6 अरब आबादी है विश्व की, तो लोगों के पास कितना प्रचुर में होगा। और फिर उसको देने वाला जो भगवान है, उनकी क्षमता कितनी होगी, उनका ऐश्वर्य कितना भारी पड़ा होगा। तो आज का जो ये जम्बू द्वीप है, ये जो श्रृंखला जो वर्णन है, इसके अंदर इसी का पूरा महत्व बताया गया है। तो हम 22वां 23वां और 24वां श्लोक इसलिए लेंगे कि दो के अंदर विस्तार से वर्णन नहीं है, और तीसरे में तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो क्योंकि चार्ट पे लिखा नहीं है, हरि बोल यहाँ पर मौजूद है, तो साथ के अंदर मेरे बोलिएगा। पहला वाला जो श्लोक है 22वां, उसमें आप में से जो भी उसको पुनः उसका उच्चारण करना चाहें कर सकते हैं, वरना समय की सीमा को देखते हुए तीनों जो श्लोक हैं उनको लगातार लेंगे। यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वः निरूढः यास्तस्य कोटरः अभ्यः विनिसताः पञ्चायाम् अपरिणाः पञ्चा मधुधारः सुपार्श्वः निखरा पन्तयः अपरेणा आत्मानाम् इलाव्रतः अनुमोदयन्ति। हे कृष्णा यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वः निरूढः यातस्य कोटरेभ्यः विनिहसताः पञ्चायाम् अपरिणाः पञ्च मधुराः सुपार्श्वः शिखरा अत्यन्तयो अपर्णे आत्मानाम् इलाव्रता अनुमोदयन्ति। हरे कृष्ण 23वां श्लोक। या हि उपयुज्यन्नानाम मुख निर्वासितः वायुः समन्तात् शतयोजनाम् अनुवासयति। 24वां श्लोक। एवं कुमुद निरूढः यः शतवर्षः नाम वटतस्य स्कन्धेभ्यः निचिनः पयः दधि मधु धृत गुड़ा अन्ना आदि अम्बरा शय्या आसना आभरम आदयः सर्वा एवा कामदुधा नन्दाः कुमुद अज्ञाता पतन्तः तमा उत्तरेणे इलाव्रत उपयोजयन्ति। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य वचन अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की। अध्याय 22, 23 और 24 का जो अनुवाद है हम सब पढ़ेंगे और मेरे बाद आप लोग उसका उच्चारण कीजिएगा। सुपार्श्व पर्वत की बगल में महाकदम्ब नामक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष के कोटर से मधु की 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 5 व्याम चौड़ी हैं। यह प्रवाहमान मधु सुपार्श्व पर्वत की चोटी से सतत नीचे गिरता रहता है। और इलावरत वर्ष की पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर उसके चारों ओर बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण स्थल सुहावनी गंध से पूरित है। मेरे साथ अनुवाद बोलिए, सुपार्श्व पर्वत की बगल में महाकदंब नामक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष के कोटर से मधु की पांच नदियां निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग पांच व्याम चौड़ी हैं। यह प्रवाहमान मधु सुपार्श्व पर्वत की चोटी से सतत नीचे गिरता रहता है और इलावरत वर्ष की पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर उसके चारों ओर बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण स्थल सुहावनी गंध से पूरित है। 23वें अध्याय का श्लोक का अनुवाद सुनिए। इस मधु को पीने वालों के मुख से हरिमो क्षम्यता, एक बार पढ़ दें फिर आप साथ में बोलिएगा। इस मधु को पीने वालों के मुख से निकली वायु चारों ओर 100 योजन तक के भूभाग को सुगंधित बना देती है। मेरे साथ बोलिए, इस मधु को पीने वालों के मुख से निकली वायु चारों ओर 100 योजन तक के भूभाग को सुगंधित बना देती है। 24वें श्लोक का अनुवाद सुनिए, शिला प्रभुपाद की। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है, जो 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवल्श कहलाता है। इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकली हुई हैं, जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां इलावृत वर्ष की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हैं। इन नदियों के फल स्वरूप लोगों के पास दूध, दही, शहद, घी, राब, अन्न, वस्त्र, बिस्तर, आसन तथा आभूषण हैं। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे सभी अत्यंत सुखी हैं। अनुवाद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। साथ में बोलिए, इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है, जो 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवल्श कहलाता है। इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकली हुई हैं, जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां इलावृत की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हैं। इन नदियों के फल स्वरूप लोगों के पास दूध, दही, शहद, घी, राब, अन्न, वस्त्र, बिस्तर, आसन तथा आभूषण हैं। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे सभी अत्यंत सुखी रहें। अनुवाद वचनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। अब तीनों श्लोकों का जो तात्पर्य है वो ध्यान से सुनिएगा। बोले भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। दोनों भुजाओं को फैलाने पर एक हथेली से दूसरी के बीच की दूरी व्याम कहलाती है, जो लगभग 8 फुट होती है। इस प्रकार प्रत्येक नदी की चौड़ाई लगभग 40 फुट और कुल मिलाकर लगभग 200 फुट होगी। मानवीय समृद्धि ऐसी आसुरी सभ्यता पर आश्रित नहीं होती जिसमें केवल गगनचुंबी प्रसाद और राजमार्ग पर दौड़ने वाले बड़े बड़े स्वचालित वाहन तो हों, किंतु वह संस्कृति तथा ज्ञान से शून्य हो। प्राकृतिक पदार्थ ही इसके लिए पर्याप्त होते हैं। जहाँ दूध, दही, मधु, अन्न, घी, गुड़, धोती, साड़ी, बिस्तर, आसन तथा आभूषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, वहाँ के वासी ही वास्तव में ऐश्वर्यवान होते हैं। जब नदी अपने प्रभूत जल की बाढ़ से भूखंड को डुबो देती है तो ये सारी वस्तुएं उपजाई जा सकती हैं और इस तरह किसी प्रकार का अभाव नहीं दिखता, किंतु यह सब कुछ यज्ञ अनुष्ठान पर निर्भर है। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भव। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म से होती है। भगवद गीता 30वां अध्याय 14वां श्लोक में इन नियमों का उल्लेख है। यदि मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में इन नियमों का पालन करे तो समाज, मानव समाज संपन्न होगा और सभी मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहेंगे। बोलिए अनुवाद तात्पर्य भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लग्मते गिरिं यत्कपातं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, श्री विष्णु हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही सुंदर व्याख्या शीला प्रभुपाद ने करी है। जैसे अध्याय शुरू करने के पहले आपको जम्बूद्वीप का महत्व बताया था, मेरु पर्वत का वृतांत बताया था, सुमेरु पर्वत का वृतांत बताया था। शिला प्रभुपाद और सुखदेव गोस्वामी आगे जो वर्णन कर रहे हैं और सूत गोस्वामी जी से हम श्रवण कर रहे हैं हम सब, तो इसमें जो बहुत ही विशिष्ट रूप से वर्णन है कि ऐसे वृक्ष की आप कल्पना करिए, जो 22वें श्लोक में वर्णन आता है कि जिसके कोटर से, कोटर होता है वृक्ष के बीच के अंदर कोटर निकला, कठफोड़ा जो कोटर बनाता है जिसके अंदर उल्लू जाके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, ऐसा जो कोटर होता है विशाल, यहाँ वर्णन है। ये देखिए, ये आध्यात्मिक दिव्य वर्णन है। ये भौतिक जगत में तो हम ये श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन यह सब दिव्य उत्पत्ति है भगवान की। भगवान की इंद्रियां इतनी विशाल हैं, यह भगवान की सर्वशक्ति सार्वभौमिकता को बताता है। तो हमारा जीवन धन्य हो अगर हम जब ये भगवान की शक्ति को अगर हम समझ लें तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये पांचवा स्कंद जो है हमारे बाद भी जो भी वक्त आएंगे आप सबसे श्रवण करेंगे, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। इससे आपको जीवन में कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा, भगवान, भगवान की उत्पत्ति, भगवान की शक्ति और हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं ये सारी उत्पत्तियां कहाँ से संभव हुई, कैसे आई। तो यह जो पांचवा स्कंद है और ये जो जम्बू द्वीप का वर्णन है ये पांचवा अध्याय जम्बू द्वीप का है। इसी स्कंद के अंत में जो 26वां अध्याय आएगा उसके अंदर सारे नरकों का वर्णन है। तो देखिए भगवान पहले सब कुछ अच्छा अच्छा सब बता देंगे पूरा। सांसारिक जगत में क्या होता है, हम सब पहले बुराइयां बता देते हैं, बुरा बुरा बता देते हैं तो सब घबराते हैं और इतना बुरा इतना बुरा इतना सब। लेकिन अंत में ढाढ़स बधाने के लिए, शांत चित करने के लिए फिर थोड़ा सा दही है, शक्कर है, शुद्ध है, खीर है, मिश्री है, ऐसी मीठी मीठी बातें करके उसको एकदम लाग लपेट के बता देते हैं ताकि जो जो आपने कड़वाहट जो ग्रहण करी है तो जब बाहर निकले कमरे के बाहर तो वो थोड़ी मिठास अंदर आ जाए जिससे चले जाए। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर है, इतनी विशाल है, सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ इतना शुद्ध है, विशुद्ध है, इतना सुनने के अंदर अगर इतना कर्ण प्रिय है तो जैसे मधु का बारे में आप सुने, मधु बोलने से ही मुंह में जीवा में मिठास आ जाती है। मिष्ठान का नाम लीजिए रसगुल्ला तो ऐसा लगता है कि उसका शीरा मुंह में है। आप हलवे का ध्यान कीजिए, हिजोई ने राधानाथ स्वामी महाराज से एक बार पूछा गया कि महाराज आपको सबसे ज्यादा मिष्ठान कौन सा प्रिय है पूरे विश्व में, क्योंकि वो तो विश्व के दूसरे भाग से आए थे और सभी प्रकार के मिष्ठान का उन्होंने स्वाद लिया था। तो उन्होंने कहा जो मैंने पहली बार और आज की तारीख तक जो सबसे विशिष्ट, सबसे मधुर, सबसे स्वादिष्ट, अमृत तुल्य, ये महाराज स्वामी महाराज के वर्णन है, उनके शब्दों का वर्णन है। उन्होंने बताया राधानाथ स्वामी महाराज ने कि उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के हाथ से बना हुआ जब शीरा हलवा खाया, हर शिला प्रभुपाद की जय, राधानाथ स्वामी महाराज की जय, बोले ऐसा लगा कि जो अमृत का वर्णन किया जाता है तो इस मृत्युलोक पृथ्वीलोक में अगर अमृत है तो शिला प्रभुपाद के हाथ से बना हुआ वो हलवा जो भगवान को भोग चढ़ने के बाद परम अमृत तुल्य हो गया, जो महाप्रसाद जब उन्होंने अपने हाथ से बांटा दिया। तो कहते आज भी मुझे सबसे ज्यादा जो लगता है मीठा मिष्ठान में वो हलवा है। तो देखिए एक चीज का वर्णन वृतांत। अब जैसे मधु का वर्णन आया तो यहां बताते हैं कि वृक्ष के कोटर से मधु की 5 नदियां बहती हैं। हम यमुना जी को देखते हैं, कावेरी, गंगा जी को, सब नदियों को। आप मन में एक बार सोचिए, विचार करिए कि आपके बगल में अगर मधु की नदी बह रही हो, हम खरीदने जाते हैं इतनी सी चीज 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, ब्लिस में देखिए 120 रुपए शुद्ध, इतनी सी शीशी 150-200 रुपए, शुद्धता का मापदंड है, इसलिए पवित्र है, इसलिए आपको वो 200 रुपए की इतनी सी मिलेगी शुद्ध। लेकिन यहाँ तो भगवान देखिए इतने दयालु कृपालु है कि भगवान नदियां बहा देते हैं, मधु की नदी। और कहते हैं कि उन नदी को मधु हम लोग तो चखते हैं, आपने सुना होगा एक चम्मच मधु खा लो, दवाई के रूप में लेते हैं आजकल, या मिठाई के अंदर थोड़ा सा आप मधु लगा दीजिए। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुख गोस्वामी बोल रहे हैं कि मधु को पीने वाले, हम लोग तो जल पीते हैं लेकिन बताइए यहाँ वर्णन है कि मधु को पीने वाले जो हैं उनके मुख से जो वायु निकलती है चारों ओर 100 योजन तक, एक योजन 8 किलोमीटर होता है, तो अगर आपके मुख से जो वो खुशबू निकले वो कितना दिव्य मधु होगा कि आपके मुख से जो वायु निकले तो 100 योजन गुणा 8, 800 मील तक, 960 किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को वो सुगंध आ जाए कि आपने हनी का, मधु का पान किया है। देखिए भगवान की, देखिए लीला है। इसी प्रकार आगे बताते हैं कि कुमुद पर्वत के ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है। हमने वृंदावन में बहुत सारे देखे, यहाँ पे भी है, वट वृक्ष है, जिसमें 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवल्श कहलाता है। शतवल्श का अर्थ होता है, इसका मतलब उसमें करीब 100 तने एक वृक्ष में। और बताइए कि जो वृक्ष जो है उसमें 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवर्ष कहलाता है। इनमें से जो जड़ें निकली हैं वो एक एक जड़ जो है उनमें से अनेक नदियां बहती हैं। हम तो गंगा, यमुना, चाइवा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, फिर जलांगी, शिप्रा नदी, क्योंकि वहाँ कुंभ मेला भराता है तो उनको भी आप जलांगी मायापुर धाम में बहती हैं उनको आप गिन लें, तो हम इतनी ही शुद्ध नदियों के बारे में जानते हैं। लेकिन जो भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी और प्रकट करी तो एक एक वट वृक्ष की शाखा से, तो आप समझ लीजिए कि जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो कहते हैं कि धात्री ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहला कुछ देखा था, जब ब्रह्मा जी कमल से भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए तो उन्होंने जो पूरा विशाल समुद्र देखा तो उनको केवल जो पहली एक ही चीज दिखाई दी थी वो था धात्री, आंवला जिसको कहते हैं, धात्री का वृक्ष। धात्री जो है आंवला, इसलिए उसमें इतने गुण हैं। धात्री जो अगर उसको आप भगवान के चरणों में चढ़ा दें तो समझिए आपने सब कुछ 56 भोग चढ़ गया। धात्री जैसे माता तुलसी होती हैं उनको चढ़ाते हैं, ऐसे धात्री का महत्व है आंवला। एकादशी के अंदर वर्णन आता है भविष्यत पुराण के अंदर धात्री का, एक एकादशी में धात्री का ही पूरा भोग भगवान की सेवा में चढ़ती है। तो जो आंवला है ऐसे ही आज यहाँ हमें पता चलता है कि कुमुद पर्वत के ऊपर विशाल वट वृक्ष भी सृष्टि के साथ थे। वट वृक्ष जिसमें 100 तने थे और हर तने से अनेक नदियां बहती थीं। ये नदियां इलाव्रत, जो जम्बू द्वीप के उत्तर दिशा के अंदर, इलाव्रत की उत्तर दिशा में, इलाव्रत जो है ये जहां तक मुझे ध्यान है दक्षिण भाग के अंदर आता है, दक्षिण भाग में जाता है, उसका जो उत्तर है, इलाव्रत के उत्तर में स्थित पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हैं। इन नदियों के फलस्वरूप लोगों के पास, अब देखिए वो नदी का है कि अभी तो एक आपने मधु की नदी सुनी शहद की, अब यहाँ नदी बह रही है दूध की, दही की, शहद की, घी की, राब की, अन्न जितने प्रकट होते सब प्रकार से आते हैं। फिर आगे वर्णन आता है, वस्त्र, बिस्तर, आसन तथा आभूषण हैं इन नदियों के कारण। आप समझिएगा, नहीं तो कोई सोचे वस्त्र की नदी बह रही है या बिस्तर की नदी बह रही है, हैं? शब्दों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि लोगों के पास इन नदियों के फल स्वरूप, शिला प्रभुपाद जी ने वर्णन में लिखा वृतांत के अंदर, उनकी समृद्धि और आभूषण भी लिखे हैं। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे अत्यंत सुखी हैं। अर्थात उन नदियों के जल से जब हम भूमि को संचित करते हैं तो वृक्ष उत्पन्न होते हैं, और फिर जैसे कपास का पौधा होता है उससे रुई आती है ये, और उससे फिर हम वस्त्र बनाते हैं, उससे आप आसन बनाइए, उससे दरी बनाइए, बिस्तर बनाइए, वस्त्र बनाइए, और वही जल को जब हम सिंचित करते हैं पृथ्वी पर तो अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं जिनसे हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है। तो उनकी उपलब्धता का कारण जो है वो ये नदियां हैं, इन नदियों के कारण। बाइबल में तो कहा जाता है, जैसे बताते हैं, बहुत सम्मान है बाइबल जी का, ग्रंथ है, लेकिन उसके अंदर वर्णन केवल इतना आता है कि नदी के पास से उत्पत्ति हो गई, नदी के पास से जो उत्पत्ति हुई मनुष्य मानव जाति की, और डार्विन की थ्योरी से तो है, तो जो लार्वा है उसी से थ्योरी से वहां से उत्पत्ति हो गई और बनमानुष से मनुष्य आ गए हैं। लेकिन हमें जो वृतांत श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है, उससे हमें हर चीज की उत्पत्ति और हर चीज की संतति का कारण भी प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जो वैष्णव धर्म है, जो हमारा मानव धर्म है, जो हमारा धर्म जो वैष्णव, या आप कहिए कि जो वेदों पर आधारित जो हमारा धर्म है, मानव धर्म है, उसकी जो उत्पत्ति और संतति का कारण हमको इन विशिष्ट ग्रंथों से प्राप्त होता है, और उन सब का कारण परमपिता परमेश्वर आदि गोविंद नारायण भगवान श्री कृष्ण है। यहां पर शिला प्रभुपाद ने अंतिम में वर्णन जो किया है, तात्पर्य शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम मानव समृद्धि का जो प्रमाण है या उसका जो मापदंड है, हम उसको क्या कहते हैं, गगनचुंबी इमारत। दिल्ली बंबई, दिल्ली बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में आप जो गगनचुंबी इमारत देखें तो हम कहते हैं समृद्धि है। हम बड़ी बड़ी कारें देखें, यहाँ तक स्वचालित आजकल वो चलता है, टोटो बैटरी से चलता है, स्वचालित टोटो, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, टमटम, टोटो, अलग अलग नाम है, मायापुर में टोटो बोलते हैं दिल्ली में चुलबुल बुलबुल, अलग अलग नाम है उसके, जिसको जो जम जाए। तो देखिए प्रभुपाद जी ने इतने वर्षों पूर्ण, और सुखदेव गोस्वामी ने और व्यासदेव जी ने जब सारी रचना करी तभी इन स्वचालित वाहनों का बता दिया था, क्योंकि आपने पुष्पक विमान तो सुनी रखा है, तो यहाँ कहाँ से वर्णन आ रहा है, हम तो 5,500 वर्ष के बाद इसको पढ़ रहे हैं। तो स्वचालित वाहनों, किंतु संस्कृति और ज्ञान यदि शून्य हो, ज्ञान कौन सा, विज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान की पूरी जो सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान, भगवान की सार्वभौमिकता, भगवान की सर्वशक्ति संपन्नता का जो ज्ञान है, भगवान की भक्ति का ज्ञान जो है वह विज्ञान है। बाकी ज्ञान तो यह है हमारा और पशुओं का समान है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, संतति करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, हमें भय होता है, ये तो पशु पक्षियों में भी होता है। तो हम में और इन पशु पक्षियों में भेद क्या है, भेद केवल है ज्ञान का और उसके साथ संस्कृति, एक जो हमें संस्कृति मिली है, आध्यात्मिक संस्कृति जो है हमारी, जो चली आ रही है एवं परंपरा प्राप्तिम, भगवान कृष्ण से लेकर आज तक जो परंपरा में जो हमको संतति प्राप्त हो रही है, संस्कृति प्राप्त हो रही है, जो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान का विशुद्ध विज्ञान प्राप्त हो रहा है इन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों के माध्यम से, तो हम अगर किसी सभ्यता का उनका जो स्थान है या उनके जो जिस भी स्तर पे वो सभ्यता है उसका अगर हम मापदंड तय करना चाहते हैं, तो वह उस सभ्यता की संस्कृति और उस सभ्यता में जो विज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान की जो भक्ति है, उससे उसका मापदंड तय किया जाता है, ना कि गगनचुंबी इमारत और मोटर कार से, या जो हम वस्त्र पहने उनसे, क्योंकि ये सब तो आभूषण वस्त्र सब तो भगवान ने इस धरा में पहले ही दे दिए हैं, हमको केवल उनका दोहन करना होता है और भगवान को अर्पित करके उनको स्वीकारना होता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं प्राकृतिक पदार्थ ही इसके लिए पर्याप्त होते हैं, हमारा मापदंड, हमारी जो हमारा हम कितने संपन्न हैं इसका मापदंड जो है, अगर आपके यहाँ दूध है, दही है, मधु है, अन्न है, घी, गुड़, पहनने को धोती, माताजी उनके साड़ी, बिस्तर, आसन, आभूषण, अगर ये आपके पास है तो आप सर्व संपन्न और यही ऐसे ही वासी जो है इस धरा के, श्री प्रभुपाद कहते हैं वे वास्तव में ऐश्वर्यवान हैं। अनुपात घर बढ़ सकता है, किसी के पास इतना हो, किसी पे इतना हो, किसी पे इतना हो, हाँ, लेकिन किसी के पास इतना हो तो ये नहीं पता वो आया कहाँ से, वो भगवान की भक्ति करके और अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है या चोर डकैती और लूटखोरी से प्राप्त हुआ है या टैक्स की चोरी करके प्राप्त हुआ, ये नहीं जानते। लेकिन ऐश्वर्यवान वो हैं जिनके पास ये प्राकृतिक जो चीज़ें जो भगवान ने दी हैं, जब नदी अपने प्रभुत जल की बाढ़ से भूखंड डुबो देती है, अभी आप देख रहे हैं केरला में और अपने पूर्वी भाग के अंदर, देश के अंदर बहुत जगह बाढ़ आई हुई है, बहुत कष्ट होता है जो वहाँ पे जितने भी मानव जाति के हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सबको घोर कष्ट है। लेकिन भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की जो उत्पत्ति है, भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी उसमें ये बताया है कि नदी की बाढ़ के जल का भी वर्णन है। तो कहते हैं कि प्राकृतिक भगवान जो हैं, कहते हैं वहाँ 100 मर गए, 200 मर गए, 500 मर गए, बहुत दुख होता है, भगवान सब उनको अपने चरणों में स्थान दें, जैसे जिसके कर्म हों, कर्मण्ये गति न्यारी। हम नहीं जानते कि किसके जीवन का क्या प्रारब्ध है, किसने शुद्ध कर्म किए, किसने दुष्ट कर्म किए, लेकिन जो पृथ्वी माता है, भगवान की सृष्टि ऐसी है कि प्राकृतिक भगवान जो है प्राकृतिक रूप से जब भूखंड पे बहुत ज्यादा आबादी बढ़ जाती है, जैसे युद्ध होते हैं, महामारी आती है, तो जैसे ये जो विपदाएं जो आती हैं, जैसे ये आपकी बाढ़ आ गई, तो ये भी उसी का एक स्वरूप है। तो हम वैष्णव हैं तो हम सबके लिए प्रार्थना करते कि भगवान सबकी रक्षा करें, सबको अपने चरणों में स्थान दें, जैसे जिसकी गति हो, जैसे जिसके कर्म हो। लेकिन माता जो है, पृथ्वी माता संतुलन बनाती हैं, तो कि कोई संतान जन्म के जन्म होते ही उनका ध्यान अंत नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है, मृत्यु आ जाती है। इसी प्रकार से विपदाएं आती है, आपदाएं आती है, भौतिक आपदाएं, उसके अंदर दैवी आपदाएं आती है, उसके अंदर भी सब लोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है उससे जब भूखंड सिंचित हो जाता है, तो प्रभुपाद बताते हैं तो ये सारी वस्तुएं उपजाई जा सकती हैं, और इस तरह किसी प्रकार का अभाव नहीं दिखता, किंतु यह सब कुछ यज्ञ अनुष्ठान पर निर्भर है। अब देखिए सूत्र आया, अभी 4 मिनट है हमारे पास, सोचिए भगवान दयालु है, क्योंकि भगवान का ही शक्ति का वर्णन कर रहे, तो अगर भगवान चाहेंगे तो 9 बजा देंगे। तो देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवान की शक्ति का, कि यह सब कुछ यज्ञ और अनुष्ठान पर निर्भर है। यज्ञ कैसा? संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम जाप यज्ञ, ये भी यज्ञ है। इसकी संतुति इस भौतिक जीवन में कलयुग में करी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षरों का जो महामंत्र है, इसके निरंतर सतत जाप से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से, शुद्ध मन से, मन की पवित्रता से अगर हम इसको करें तो यह यज्ञ अनुष्ठान ही है। ये नहीं कि सतयुग के अंदर और त्रेता युग में और द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते थे, आज भी लोग करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, मंत्रों के उच्चारण में उतनी शक्ति नहीं है, और ना ही उतनी मनुष्य में उतनी शुद्धता है, ना ही उतना विज्ञान है। किंतु प्रयास योग युक्ते ना भक्ति योगेन सेवते, तो प्रयास करने से भक्ति आती है। लेकिन यहाँ श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि ये संकीर्तन यज्ञ, ये संकीर्तन जाप, हरिनाम जाप का यज्ञ करते हैं, अगर ये किए जाए तो यह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, जो भूमि देवी माता है वो सब कुछ स्वयं ही उत्पन्न कर देती हैं, ये उनके गर्भ में बसा हुआ है, जो भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति से स्थापित किया हुआ है, इन सबको प्रकट कर सकते हैं। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं, ये जो श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी आपसे कोई पूछे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब पूछते हैं, आप तो बहुत माला फेरते रहते हो, 24 घंटे घंटी बजाते रहते हो, धोती घंटी माला लेके सब जगह करते रहते हो, आप ये बताओ कि ये सब कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है। तो आज हमें ये ज्ञात हो रहा है, भगवान बता रहे हैं ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है, कि यह सब सभी प्राणी अन्न पर निर्भर है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है। अब कोई सोचे कि अरे जब वो ऊपर से बादल आएंगे तो बारिश हो जाएगी, वृंदावन में 15 दिन से 20 दिन से बादल छाए थे, पानी तो नहीं गिर रहा है प्रभु जी, बादल तो रोज दिखते हैं, लेकिन जहां सब भक्तों ने मिलकर जोर से यज्ञ अनुष्ठान किए, सन 1974 के अंदर मुझे एक वृतांत याद आ रहा है, शीला प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे, ये श्रीमद् भागवत के अंदर है, मतलब जी आपको आगे पढ़ने में मिलेगा। शीला प्रभुपाद जी ने तो अकाल आया हुआ था भारतवर्ष के अंदर, बहुत जगह बहुत समय से वर्षा नहीं हुई, जमीन फट गई थी पूरी, शीला प्रभुपाद जी ने संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कराया, दिल्ली से लेके हैदराबाद, प्रभुपाद हैदराबाद में मौजूद थे उस समय, और सारी जगह यज्ञ हुआ, संकीर्तन यज्ञ, और इतना विशाल संकीर्तन यज्ञ किया, इतना घोर संकीर्तन यज्ञ किया कि घन घोर बारिश हो गई थी प्रभु जी, पर्जन्या, इतनी घोर बारिश हुई कि बाढ़ के आसार आ गए, कई जगह गोदावरी में कृष्णा में कई जगह बाढ़ आ गई, इतनी घोर वर्षा हुई थी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है जो हमारे ही जीवन काल में प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, कि अगर भागवत में भगवद गीता में भगवान ने कहा तो प्रभुपाद जी ने उसका उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि यज्ञ जो है वर्षा यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म से। नियत कर्म कैसा? सुबह समय से उठें, मंगल आरती करें, भगवान के दर्शन करें, और संकीर्तन यज्ञ करें, श्रीमद् भगवद गीता भागवत का पाठ करें, भगवान को अपने हाथों से भोग बना के चढ़ाएं, उस भोग को महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करें, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, भक्तों की संगत करें, ये नियत कर्म है, और इन्हीं के द्वारा यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, और उसी से अन्न उत्पन्न होता है, और उसी के द्वारा पृथ्वी माता से भू देवी से हमको सभी कुछ प्राप्त होता है। यदि मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत में इन नियमों का पालन करे तो मानव समाज संपन्न होगा और सभी मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहेंगे। ये आज का मूल मंत्र है, आज के इस अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा कि अगर मानव समाज कृष्ण भावना मृत में रहकर इन नियमों का पालन करे, संकीर्तन यज्ञ का, तो सभी मनुष्य हम सभी, और इस लोक में ही नहीं परलोक के अंदर भी हम लोग सुखी रहेंगे। बोले अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राशि मद भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा।